32 नंबर की रजिस्टर में 97 से 35 नंबर का ट्रैफिक है। सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वो कथा करने वाला बाप है, न वो बच्चे हैं, वो तो भास्कर में फॉलोअर्स भी नहीं है, सब झूठ ही झूठ है। यहाँ तो बच्चे भी हैं और स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इसी चीज की दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चल करके राजी करेंगे। तो ये बात तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। क्या बात, कि और कोई सत्संग ऐसे नहीं होते हैं जहाँ फॉलोअर्स हो, क्योंकि वो फॉलो तो करते नहीं है पूरा। गुरु कफन ही पहनता है, केले गृहस्थी बनकर रहते हैं, तो फॉलोअर कहाँ हुए? गुरु ने घर घाट सर्व कुछ अर्पण किया, सबका त्याग किया, और फॉलोअर्स सब ग्रहण करके बैठते हैं। दुनियावी सत्संग में भी ऐसे होता है, तो ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में ऐसे ही हुआ। ब्रह्मा ने तो सब कुछ अर्पण कर दिया, और जो ब्रह्मा के फॉलोअर्स बने अथवा बच्चे बने, उनमें कोई कैसे पूरा अर्पण में एक भी नहीं बना। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब झूठ ही झूठ है, परंतु यहाँ तो बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी, पूरा तुमको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? एक बाप को फॉलो करना है। बाप का रूप दिखाया जाता है यादगार चित्रों में। क्या रूप दिखाते हैं? बैगर। तो तुम बच्चे भी फुल बैगर टू फुल प्रिंस बनने वाले हो। उन साधु संतों को तो सिर्फ भस्म रमाए हुए दिखाते हैं, वो राख बनते नहीं है। तुम और तुम्हारा बाप तो राख बनता है। इसलिए अर्गतवाणी में क्या बोला, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, राख कौन बनते हैं। राख बनना माने अपना पूरा देह अभिमान नष्ट कर देना। बाबा जाएंगे तो बच्चे भी इसी छिकी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में राजी करेंगे, जाएंगे। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। देह का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है, ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। باقی ساری دنیا میں تو سب بے سمجھ ہیں، سمجھتے نہیں ہے کہ وہ بے حد کا باپ کیسے ہے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں بےحد من 500 کروڑ، جو بھی منشی ماتر ہیں سب کا باپ۔ باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں، راون نے تم کو کتنا بے سمجھ بنا دیا، باپ آ کر کے سمجھدار بناتے ہیں، سارے وشو پر راجی کرنے لائق اتنا سمجھدار بناتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ لائف بھی ایک ہی بار ہوتی ہے، جبکہ بھگوان آ کر کے پڑھاتے ہیں۔ تمہاری بدھی میں یہ بات ہے؟ باقی جو اپنے دھندے دھوری آدمی پھنسے ہوئے رہتے ہیں، ان کو کبھی یہ بدھی میں آ نہیں سکتا کہ بھگوان پڑھاتے ہیں۔ تو کیا کریں، دھندا دھوری چھوڑ دیں کیا؟ دھندا چھوڑ دیا جائے کیا؟ بابا تو کہتے ہیں بھلا اپنا دھندا دھوری کرو، دھندا دھوری میں پھنسے ہونے کا مطلب بدھی پھنسی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ دھندا دھوری کرتے بھی بدھی میں کیا رہے، یہ دنیا سب خلاص ہونے والی ہے، بابا نے ہمیں بتا دیا سب دھندوں میں نقصان ہونے والا ہے، سوائے ایک ایشوریہ دھندے کی۔ تو کوئی کوئی تو دھندے دھوری میں بہت پھنسے ہوئے رہتے ہیں، بچوں کو اپنا دھندا یاد رہتا ہے۔ تو تم بچے جب کہ جانتے ہو بھگوان ہم کو پڑھاتے ہیں، تو بچوں کو سدائے کتنا ہرشت رہنا چاہیے۔ اور تو سب ہیں پائی پیسے والوں کے بچے، یا تو تم بچوں کو اتھاہ خوشی رہنی چاہیے، وہ تو بہت ہرشت رہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں بابا ہماری مرلی نہیں چلتی، ارے مرلی کوئی مشکل تھوڑی ہے، جیسے بھکتی مارگ میں سادھو سنت آدی کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ایشور سے کیسے ملے، پرنتو وہ جانتے نہیں، صرف انگلی سے اشارہ کریں گے اوپر کی اور کہ بھگوان کو یاد کرو، بس خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتے، اپنے باپ کو کوئی بھی جانتے نہیں ہیں، ایسے ہی سارا اوپر کی اور کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ڈرامہ ہی ایسا بنا ہوا ہے، پھر بھی بھول جائیں گے، ایسے نہیں کہ تمہارے میں سبھی باپ اور رچنا کو جانتے ہیں، کہاں کہاں تو چلن ایسی چلتے ہیں بات مت پوچھو، وہ نشہ ہی اڑ جاتا ہے۔ ابھی تم بچوں کا پیر پرانی دنیا پر جیسے کہ نہیں ہے، تم جانتے ہو کلی کی دنیا سے اب ہمارا پیر اٹھ گیا ہے، کون سا پیر؟ بدھ روپی پاؤں اٹھ گیا ہے، بوٹ کا لنگر اٹھ گیا ہے، بوٹ مانا شری روپی نویا کا جو بدھ روپی لنگر ہے وہ اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، مانا اس سے دوسرا جاتا ہے ندی کو کراس کر رہے ہیں، باپ ہم کو کہاں لے جائیں گے، یہ بدھی میں ہے، کیونکہ باپ کھیویا بھی ہے اور باغوان بھی ہے، کانٹوں کے جنگل کو آ کر کے پھولوں کا باغیچہ بناتے ہیں، ان جیسا باغوان کوئی ہے نہیں جو کانٹوں کو پھول بنا دے۔ یہ جادوگری کوئی کم تھوڑی ہے، کوڑی برتھ آتما کو ہیرا برتھ بناتے ہیں۔ آج کل جادوگر بہت نکلے ہے، تو یہ ٹھگوں کی دنیا، اور باپ ہے ست گرو، ٹھگ نہیں ہے سچا گرو ہے، کہتے بھی ہیں ست گرو اکال، اکال مانا جس کو کال کھا نہ سکے. کیوں ایسا دنیا میں کون ہے جس کو کال نہ کھائے؟ اور کال کھاتا کس کو ہے؟ آتما کو کھاتا ہے کہ شریر کو کھاتا ہے؟ تو ایسا دنیا میں کوئی ہے جس کا شریر ناسبان نہ ہو؟ وہ تو شنکر کو کہتے تو ہیں, لیکن کیا شنکر کا شریر پانچ ہزار سال جو کہتے ہوں بنا رہتا ہے کیا؟ اکال مورت کا کیا مطلب ہوا؟ اکال مورت کا مطلب جو کال آتا ہے وہ کال اس کے بس میں ہو جائے, جب چاہے تو اچھا مرتیو کر سکے, جب چاہے تب شریر چھوڑے. مانا پانچ تتوں کا پتلا بھی اس کے اپنے اندر میں ہو, کال اس کو نہ کھا سکے. ایسے تو سامان کال سبھی کو کھاتا ہی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے مہاکال. کب ہوتا ہے؟ جب مہاوناش ہوتا ہے تو مہاکال بھی ہوتا ہے. اور ایسے مہاوناش کے پیریڈ میں بھی جو کال کے وسیلے سے نہیں ہوتا, بہت دھن لگاتے ہیں, کہتے ہیں ست گرو اکال, جبکہ خود کہتے ہیں ست گرو ایک ہے, سرو کا سدگتی داتا ایک ہے, پھر اپنے کو گرو کیوں کہلانا چاہیے؟ انیک تو نہیں ہوئے نا, نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ لوگ ہی کچھ سمجھتے ہیں. اس پرانی دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ بچوں کو جو معلوم ہوتا ہے بابا نیا گھر بنا رہے ہیں, تو ایسا کون مورکھ ہوگا جو نئے گھر سے نفرت پرانے گھر سے پریتی رکھے؟ بدھی میں نیا گھر ہی یاد رہتا ہے نا. تم بے حد باپ کے بچے بنے ہو تو تمہیں اسمرتی رہنی چاہیے کہ باپ ہمارے لیے نیو ورلڈ بنائے رہے, ہم اس نیو ورلڈ میں جاتے ہیں. اس نیو ورلڈ کے انیک نام ہیں, ستیگ ہے, ون پیراڈائز, بیکنٹھ, جنت آدی آدی. تمہاری بدھی اب پرانی دنیا سے اٹھ گئی ہے, کیونکہ پرانی دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. اس دنیا کا نام کیا ہے؟ دکھ دھام. نام ہی ہیل, کانٹوں کا جنگل, رو رو بنا رہتے, کنس پوری. ان کا ارتھ بھی کوئی جانتے نہیں ہے, کیونکہ پتھر بدھی ہے نا. بھارت کا دیکھو کیا حال ہے, باپ کہتے ہیں سب پتھر بدھی, اور ستیگ میں سب ہوں گی پارس بدھی. یہ تھا راجا رانی تھا پرجا, یہاں تو ہے ہی پرجا کا پرجا پر راجا, اس لیے سب کی اسٹامپ بناتے رہتے. سب کی مانو پرجا کا پرجا پر راجی. پرجا کس کے کہا جاتا ہے؟ پربھاوت ہونے والی کو پرجا کہا جاتا ہے. تو جو بھی دوسروں سے پربھاوت ہوتے ہیں وہ سب پرجا. اب ایسا کون سا ہے جو پربھاوت نہیں ہوتا؟ جو پربھاوت نہیں ہوتا کسی سے وہی راجا, وہ کسی کے آدھین بھی نہیں ہوتا. اس کلی کی دنیا میں انت میں آ کر کے سارے دیشوں میں, ساری دنیا میں پرجا کے اوپر پرجا کا راجی ہو جاتا. تو راجا تو کوئی ہے نہیں, تو جب پرجا ہی راجی کرنے والی بن گئی تو سب کے اسٹامپ بنتے رہتے ہیں, جو آیا اس کا اسٹامپ بنایا. اب تم بچوں کی بدھی میں یہ یاد رہنا چاہیے से ऊंचे के ऊंचा तो बाप है, फिर सेकंड नंबर में ऊंचे के ऊंच कौन हुआ? ऊंचे के ऊंचा बाप फिर सेकंड नंबर में कौन हुआ? बाप के साथ कौन? माता चाहिए ना। अरे बच्चों के लिए तो ये बुद्धि में आना सहज है कि उनके तो उनका बाप फिर सेकंड नंबर में वो हमारा बड़ा बाप है, बड़े से बड़ा बाप है, बेहद का बाप। तो उनके तो उनकी होगी बेहद की माँ, बड़ी माँ। बड़ी माँ का नाम क्या हुआ? ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा का मतलब दाढ़ी मूछ वाली नहीं, उसकी पूजा होती है भारतवर्ष में किस रूप में? जगदम्बा के रूप। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है, शंकर की तो पैरवैश आदि देखो कैसी बनाई दी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन सी दुनिया के हैं? सूक्ष्म बतन के। वहां ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहा जाएगा? वहां की बात नहीं है, फिर बात कहाँ की है? इस साकार सृष्टि पर साकारी स्टेज में कहा जाता है तो शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर इनकी ऊंचाई नहीं। पैरालाइज भी उनको नहीं दिखाते हैं, कह देते हैं भांग पीते थे, बतूरा खाते थे। अब ये तो इंसल्ट हो गई। बात ये बातें नहीं होती कहां, वहां सतयुग में तो ये बातें नहीं होती हैं कि भांग खानी पड़े, बतूरा खाना पड़े। ये तो अपने धर्म को ही भूल गए, अपने ही देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। सब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, और विष्णु की तो बेइज्जती होती नहीं। तो सतयुग का है, वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये तो पीछे संन्यास करते हैं, वो तो छोटा बच्चा है जो है ही पवित्र, पाप आदि को जानता नहीं है। तो ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? सूक्ष्म बतन में होना चाहिए या साकार दुनिया में? जहाँ साकार दुनिया में प्रजा है वहाँ पिता होगा। प्रजा पिता ब्रह्मा को दिखाया है शरीरधारी। अजमेर में उनका मंदिर है, क्यों मंदिर कहाँ बनाई दिया? अजमेर में मंदिर बनाई दिया, और दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को। शंकर को व विष्णु को नहीं देते हैं, क्यों? दाढ़ी मूछ किसको दी जाती है? जो विकारी होते हैं मनुष्य उनको दाढ़ी मूछ देते हैं, और जो निर्विकारी देवताएं होते हैं उनको क्लीन शेव दिखाते हैं। तो ये समझ की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में कैसे होगा? जरूर साकार शक्ति पर होगा, वो तो यही होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। जरूर क्यों बताया? इतनी संतान है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, और चैतन्य में है तो जरूर कुछ करके भी होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या कुछ और भी करते हैं? बल आदि को जो ब्रह्मा आदि को भी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पार्ट क्या है ये किसी को पता नहीं। रचयिता है तो जरूर यहाँ होकर के गया होगा, सही कह रहे थे। नई दुनिया का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, ब्राह्मणों का रचयिता, जरूर ब्राह्मणों को स्वभाव ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया। ये नई बात है, जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकता। जिसका जो पार्ट है वो ही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पार्ट बजाया, कब आया, क्या करके किया, तो जानता तो नहीं, तुम अभी जानते हो। वो कोई गुरु टीचर और बाप है क्या? नहीं, वो तो धर्म पिता है, कुछ भी नहीं है। वो सदगति तो दे ही नहीं सकते, खुद भी नीचे गिरते जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराते जाते हैं। वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता है, गुरु नहीं है। बाप बच्चों को रखते हैं, फिर पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप टीचर भी है तो गुरु भी है, तीनों है। दूसरे को तो थोड़े कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नाली है ही नहीं। देहत का बाप ही ज्ञान का सागर, उनकी ही महिमा गाई हुई है, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राजभाग दिया है, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम तो फिर से पांच चार वर्ष बाद आकर के मिले, बच्चों को अंदर खुशी है, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पांच चार वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले। बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में वो खुशी रहनी चाहिए। कौन सी खुशी है? तो भगवान बाप हमको मिला, शिव बाबा के मिलने की याद तो बुद्धि में है ना, याद से ही कितने पाप कटते। अबलाओं बांधोलियों के तो और ही जाति पाप कटते, तो जाति शिव बाबा की याद करती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो बुद्धि उनकी शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा की याद करेंगी ये तो भलाई हो गई। क्या मार खाना, ऐसी मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। क्यों बलिहार जाना चाहिए? शिव बाबा याद आएगा, इसलिए बलिहार जाना चाहिए कि कर्मों का हिसाब किताब तो होता ही है। यहाँ हमको बाबा मिला हुआ है तो सूली से कांटा बन रहा है, लेकिन इससे पहले के जन्मों में हमने क्या किया होगा? हमने तो उससे भी जास्ती मार लगाई होगी। हमारा सूली से कांटा बन रहा है और उनका क्या हाल हुआ होगा? तो हिसाब किताब तो जरूर पूरा होता है, ये अंतिम जन्म है। अब इसके बाद कोई ऐसा जन्म नहीं लेना है जिसमें हिसाब किताब पूरा हो। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण कण से निकले। तो कौन सी मुख में गंगा हो? ज्ञान गंगा। ये कर्मों का हिसाब किताब जो बाप बैठे बताते हैं वो अंदर अंदर रमण करता रहे। बाबा कहने की वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा न याद पड़े। बाप के पास मिल्कियत जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। ये तो तुमको भी इसके लिए मार देकर के शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तो तुम्हारी कल्याणकारी है या कल्याणकारी
تو کلیان کاری ہو گئے. جیسے کہا جاتا ہے لڑائی کلیان کاری ہے. یدھ میں یدھ کر کے جو شریر چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں سورگ میں جائیں گے. تو یہ بھی کون سی لڑائی ہے؟ اصلی لڑائی تو یہی ہے. کون سی؟ گیٹ وے ٹو ہیون از مہابھارت. یہ مہاباری مہابھارت گرہ یدھ, یہ گھر گرہست کا یدھ ہے, گھر گھر میں چلتا ہے. باپ آ کر یہ یدھ کراتے ہیں. یدھ ہے کون سا واسطو میں؟ بیکاروں کا یدھ ہے نا. تو یہ لڑائی کلیان کاری ہے. یہ مار بھی اچھی ہوئی نا. آج کل بچوں کو پردرشنی میلوں کی سروس پر بہت زور ہے. نو نرمان پردرشنی کے ساتھ ساتھ لکھ دو گیٹ وے ٹو ہیون. دونوں اکثر ہونا چاہیے. نئی دنیا کیسے استھاپن ہوتی ہے؟ ان کا ایگزیبیشن ہے تو منشیوں کو سن کر کے بہت خوشی ہوگی. نئی دنیا کیسے استھاپن ہوتی ہے, ان کے لیے چتر بنائے ہوئے ہیں. آ کر کے دیکھو گیٹ وے ٹو نیو ورلڈ. یہ اکثر بھی چیز ہے. یہ جو لڑائی ہے ان کے دوارا گیٹس کھلتے. گیتا میں بھی یہ بھگوان آیا تھا, آ کر کے راجیوگ سکھایا تھا, منشی سے دیوتا بنایا تھا. تو ضرور نئی دنیا استھاپن ہوئی ہوگی نا. منشی کتنا کوشش کرتے ہیں مون میں جانے کی, دیکھتے ہیں دھرتی ہی دھرتی ہے اور وہاں منشی کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آتے. تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ابھی تم تو بالکل ریئل سائلنس میں جاتے ہو, آخری بھی بن جاتے ہو. یہ ہے سائلنس گول. تم چاہتے ہو موت, شریر چھوڑ جانا چاہتے ہو اور باپ کو بھی موت دینے کے لیے بلاتے ہو کہ آ کر کے اپنے ساتھ مکتی جیون مکتی میں لے جاؤ. پرنتو کوئی سمجھتے تھوڑے ہی ہے. پتی جب پاون آئیں گے تو جیسے ہم کالوں کے کال کو بلاتے. ابھی تم سمجھتے ہو بابا آیا ہوا ہے, کہتے ہیں چلو گھر اور ہم گھر جاتے ہیں. بدھی کام کرتی ہے نا. یہاں کئی بچے ہوں گے جن کی بدھی بندے آج کی طرف دوڑتی ہوگی. فلانا بیمار ہے, کیا ہوا ہوگا, انیک پرکار کے سنکلپ آ جاتے. باپ کہتے ہیں تم یہاں بیٹھے ہو. آتما کی بدھی باپ اور ورثے کی طرف رہنی چاہیے. آتما ہی یاد کرتی ہے. سمجھو دوسرا بچہ لندن میں ہے, سماچار آیا بیمار ہے, بس بدھی اس طرف چلی جائے گی. پھر جان بدھی میں بیٹھ نہیں سکتا. یہاں بیٹھے ہوئے بدھی میں ان کی یاد آتی رہے گی. کوئی کا پتی بیمار ہو گیا تو استری کے اندر اتل پتل ہوگی, بدھی چلی جاتی ہے نا. تو تم بھی یہاں بیٹھے سب کچھ کر کے شیو بابا کو یاد کرتے رہو. اور طرف بدھی نہیں جانی چاہیے. کیا بات ہوئی؟ مدھوبن میں بابا کے پاس بچے پہنچتے ہیں, گھر گھاٹ چھوڑ کر کے تھوڑے سمے کے لیے جاتے ہیں اور مدھوبن میں تار آ جائے کہ بچہ بیمار ہے, پتی بیمار ہے, تو بدھی جائے گی نہیں. کب تک جائے گی؟ کب تک جاتی رہے گی؟ جب تک کرموں کا بندھن رہے گا تب تک اس کے پاس بدھی جائے گی. اور جب کرموں کا بندھن ٹوٹ جائے گا تو جیسے دنیا میں لوگ بیمار ہوتے رہتے ویسے استھتی رہے گی. تو تم بھی یہاں بیٹھے ہو سب کچھ کرتے شیو بابا کو یاد کرتے رہو تو اہو سوباگیہ. جیسے وہ پتی کو اتھوا گرو کو یاد کرتے ہیں تم باپ کو یاد کرو. کوئی بیمار آدمی ہے جانتے ہیں مرنا ہوگا تو مر جائے گا. واہ ہم تو اپنے باپ سے مرتا لیتے ہیں. ایک منٹ بھی تم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. باپ کو جتنا یاد کریں گے تو سروس کرنے میں بھی باپ ہی یاد آ گیا. بابا نے کہا میرے بچوں کو سمجھاؤ. یہ کس نے کہا؟ تو بابا نے کہا کشن کے بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ ان کو کہو کشن نئی دنیا استھاپن کر رہے ہیں. کیا کہا؟ سو بابا نہیں استھاپن کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ ان کو کہو کرشن نئی دنیا استھاپن کر رہے ہیں. مانیں گے وہ اس بات کو؟ مانیں گے کہ کرشن نئی دنیا استھاپن کر رہے ہیں؟ بنانے کے لیے آیا ہوں تو وہ مالک بنیں گے. واہ بابا, ہم کیوں نہیں بنیں گے؟ اچھا تو مجھے یاد کرو, پوتر بنو. یاد سے ہی تمہاری پاپ بتل ہو جائیں گے. تم بچے جانتے ہو وکرموں کا بوجھ آتما پر ہے, کوئی شریر پر بوجھ نہیں ہے. وہ سنیاسی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں آتما نر لیتے ہیں اور شریر پر پاپ پنیہ کرتا ہے. اگر شریر پر بوجھ ہوتا تو جب شریر کو جلا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پاپ کرم بھی کیا ہونے چاہیے, جل جانے چاہیے؟ آتما تو ہے ہی اویناشی, اس میں صرف کھاد پڑتی ہے وکاروں کی, جس کو نکالنے کے لیے باپ ایک یوکتی بتاتے ہیں کہ میرے کو یاد کرو. اسے یوگا اگنی میں اپنی ساری کھاد بسم کر دو. پتے سے پاون بننے کی یہ یوکتی دیکھو کیسی اچھی ہے. مندر بنانے والے شیو کی پوجا کرنے والے بھی بھکت ہیں نا. پجاری کو کبھی پوج نہیں کہیں گے. اچھا بیٹھے میٹھے سکیم جو بچوں پر مات پتا باپ دادا کا یاد کر گڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو آج کی اگست وانی ہے 4771 پیج 122 ہیڈنگ دیا ہے یاد کی سہج ودھی. یہاں سبھی بیٹھے ہیں تو کس اسٹیج کی استھتی میں استھت ہیں؟ اس سمے سے آپ کی یاد کی اسٹیج کون سی کہیں گے؟ کیا اس استھتی میں ڈبل یاد ہے و سنگل یاد ہے؟ اس سمے کی اسٹیج کو کرماتیت و فرشتاپن کی اسمرتی کی اسٹیج کہیں گے؟ جو ابھیکت استھتی کے سوائے اور کوئی اسٹیج سمجھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں. سارے دن میں ایسی ابھیکت استھتی میں استھت رہ کر کے کرم کر سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. سارے دن میں ایسی ابھیکت استھتی میں رہ کر کے کرم کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ تو نے کہا نہیں. ابھی جو لکھ رہی ہو یہ بھی تو کرم ہے نا, تو ابھی کرم کرتے ہوئے ایسی اسٹیج نہیں رہ سکتی ہے. تو نے کہا ابھی بابا کی سنم کو بیٹھے ہیں. اگر سدیو سمجھو بابا ہمارے ساتھ ہی ہے, سنمکھ ہے, تو پھر سدیو یہ اسٹیج رہنی چاہیے نا. وہ لوگ جب ایسے وایو منڈل میں خاص اٹینشن رکھ کر کے جاتے ہیں تو یہ اٹینشن ہی انہوں کی سیفٹی کا سادھن بن جاتا ہے. ایسے ہی چاہے کوئی بھی سادھارن کرم بھی کر رہے ہو تو بھی بیچ بیچ میں ابھیکت استھتی بنانے کا اٹینشن رہے, اور کوئی بھی کاری کرو تو سدیو باپ دادا کو اپنا ساتھی سمجھ کر ڈبل فورس سے کاری کرو تو بتاؤ اسٹیج کیا ہو جائے گی. ایک تو اسمرتی بہت سہج رہے گی, جیسے ابھی سنمکھ سمجھنے سے سہج یاد ہے, اسی ریتے اگر سدیو ہر کرم میں باپ کو اپنا ساتھی سمجھ کر چلو تو کیا یہ سہج یاد نہیں رہے گی؟ کوئی سدیو ہی ساتھ رہتا ہے, اس ساتھ کے کارن وہ سوتھ یاد رہتی ہے. को ऐसी साथ ही रहने से व बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए और आप हो ही सत्संगी। हर एक सेकंड हर कदम में सत्य की संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद भी तो सहज रहेगी ना। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वो सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। और उस समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य भी कर सकते हो, एक सहज याद और दूसरी सफलता। तीसरा, सब कर्मों में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति भी होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बनाते हो कि सदैव सत्य का संग रखो, तो ये अभ्यास अपन को निरंतर करना पड़ेगा। तो जो याद मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद ठहरे कैसे, कहाँ ठहरे, ये सभी बातें खत्म हो जाएंगी, कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इस बात में चाहे निराकार रूप से संग करो और चाहे साकार रूप में संग करो, लेकिन संग सत्य का करो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति व निराकारी स्मृति, कोई भी स्मृति हो लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि को न हो। बाप दादा दो हुए या एक हुआ? और सारे कल्प में अविनाशी संग रहेगा, वो बात दो के लिए है या एक के लिए है? एक के लिए है। दो साथ रहेंगे या एक साथ रहेगा सारे कल्प में? जब बाप कहा जाता है तो बाप का मतलब है सुप्रीम सोल, ज्योति बिंदु, शिव और प्रजापिता। सारी मनुष्य शक्ति का पिता। इस संगम युग में वो दोनों प्रत्यक्ष नहीं हो सकते जब तक दोनों एक में न हो। निराकार के बगैर साकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और साकार के बगैर निराकार प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो तो हुआ बाप, और दादा कौन हुआ? कृष्ण की सोल, बड़ा बच्चा। तो बड़ा बच्चा जो है, पहला पत्ता जो है सृष्टि का, बीज नहीं, पहला पत्ता, वो हुआ दादा। बड़े भाई को दादा कहा जाता है। तो बाप दादा के संग के सिवाय और कोई संग बुद्धि को न हो। ये दो हुए ऊंचे से ऊंचे, बाप और दादा, या कहो कि बाप और बड़ी माँ, जगत पिता और जगदम्बा। तो सारे कल्प में अगर इनका साथ बना रहे तो खुशी ही चली रहनी चाहिए ना, क्योंकि पावरफुल आत्माएं हमारे साथ हैं। तो हमारे अंदर कमजोरी कहां से आएगी? ये स्मृति सदा रहे। अब ये कहा कि निराकारी स्टेज हो या साकारी स्टेज हो, निराकारी की याद हो चाहे साकारी की याद हो। इसका मतलब ये नहीं कि निराकार सिर्फ बिंदु की याद हो, स्टेज की बात है। बाप चाहे निराकारी स्टेज में हो और चाहे साकारी स्टेज में माँ के रूप में हो, माँ साकार होती है, बाप निराकार होता है, लेकिन दोनों प्रकार की स्मृति में संग रहने से हमको फायदा ही है। सरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो सरिश्ता तो बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ता बन जाए। और है भी क्या जहां बुद्धि जाए, क्योंकि यहां तो बाप और दादा दोनों कंबाइंड हैं, तो दो नहीं हुए, यहां तो एक ही है। अभी कुछ और कुछ रह गया है क्या जहां बुद्धि जाती हो? सर्व संबंध है, सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं अथवा नहीं किए? गवर्नमेंट भी रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते खत्म हो गए, रास्ते भी, फिर बुद्धि में कहां जाएगी? रास्ते में रास्ते भी जब सारे बंद हैं तो बुद्धि आगे भी जाएगी कहां? एक ही रास्ता है, एक ही रिश्ता है, तो फिर फरिश्ता तो बन ही जाएगी। तो चेक करो कौन सा रास्ता अथवा कौन सा रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी कोई खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से आने की। तो बिल्कुल बंद तो कोई जावेगा ही नहीं, सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। यहां भी अगर जरा भी रास्ता खुला हुआ होता है तो बुद्धि जरूर जाती है। तो अभी रास्ता ब्लॉक कैसे करेंगे? अभी रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं, रोज मुरली में भी सुनते हो, वो युक्ति याद है? जो स्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर ये चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डलवाते हो ना? अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे? ये है सहज युक्ति। और निशानी भी दी हुई है, ये तो रोज मुरली में सुनते रहते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये युक्ति ना हो। ये बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि ये चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो भी रख सकते हैं। कौन सा चित्र? बैज। भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। पॉकेट के बाहर डालने की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि रूपी पॉकेट में इस चित्र को डाल लो। इस एक ही चित्र की स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती है। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। कौन से चित्र में है? त्रिमूर्ति का चित्र जो बैज में दिया हुआ है। तो ये बुद्धि में होना चाहिए, एक्यूरेट चित्र होना चाहिए कि ब्रह्मा का पाठधारी कौन, विष्णु का पाठधारी कौन और शंकर का पाठधारी कौन। बुद्धि में स्मृति स्वरूप होना चाहिए। रचयिता और रचना के ज्ञान से ये प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मुझे मत याद किसको करें, क्या याद करें, पता नहीं याद नहीं होती है तो जानबूझकर अपने को बुझाती हूँ। याद है क्या? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, तो ये सब याद ही हुई ना। बाप के गुणों को याद करेंगे, बाप के कर्मों को याद करेंगे तो बाप ही याद आवेगा। रूप की याद हो व नाम की हो व गुणों की हो व कर्तव्य की हो, याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते, कोर्स नहीं आता, कोर्स नहीं रह जाते। उस याद को सहज करो। बाबा के सिवाय अब और कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्विस ने ही बाप को ही समझ लिया, प्रैक्टिकल में समझ लिया या इम्प्रैक्टिकल में समझ लिया कि बाप प्रैक्टिकल में सर्व का इसने ही है, तो फिर उसको याद करने के लिए उसको प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है और कहां अब तक भी रास्ता खुला हुआ है, इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत करके लौटाना पड़ता है। तो उस बात में तुम थक जाती, तुम्हारा माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाती। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ये बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है, पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएगा, सहज हो जाएगा और नेचुरल हो जाएगा। ये अटेंशन रखना मुश्किल है या सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बनाए देते। अगर ये अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होगा। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो इसलिए अभी मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती हैं तो वो सहज स्मृति में रहती है, जितना बड़ा होता जाता है बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे तो उन्हों को अभी भी मुश्किल लगता है। अभी तो बीती से बीती, सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ, ये समझने से वो बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना ये स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कारी सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग नहीं समझो, सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। साथ कौन सा और हाथ कौन सा है? अगर कोई बड़े हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र हो जाती है, निश्चिंत रहती है। तो आपका बुद्धि रूपी हाथ बाप के बुद्धि रूपी हाथ में आ गया, ऐसे सदैव समझो। हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। अभी बोझ बाप के ऊपर रख दो, अपन को हल्का कर देना चाहिए। अगर बोझ नहीं होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा, बोझ होगा ही नहीं तो मुश्किल लगेगा कैसे। बोझ उतारने का व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। तो ये बात तो सहज है ना, पर चाहे बाप स्मृति में आए चाहे दादा स्मृति में आए, क्या दोनों अलग अलग हो गए क्या है? अभी वर्तमान में ज्ञानियों के लिए तो बात एक ही है, लेकिन जब अज्ञानता की स्टेज में आ जाते हैं तो समझते हैं कि बाप अलग है अज्ञान और दादा अलग है। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिए के बगैर दूसरा पहिया काम नहीं करता। दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी। ये सचरूपी गाड़ी भी राम और कृष्ण ये दो पहियों के सिवाय चल नहीं सकती। बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, ये अलग नहीं हो सकते। अगर साकार इसने ही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी। क्यों क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जिस साकार के हम इसने ही बनते हैं वो साकार भी बुद्धि और किसमें लगाता है? एक बाप में ही लगाता है। तो जैसे को हम याद करेंगे वैसी हमारी भी बुद्धि बन जाएगी। साकार इसने ही बनना भी कोई कम बात नहीं है, साकार इसने ही कर्म से इसने हो जाता है, संबंधों से बुद्धियों को तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो हुआ ना, साकार से निराकार तरफ याद आवेगा। साकार से इसने भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ। अगर बाप दादा का साथ न होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ हैं वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कब नहीं समझना कि मुश्किल है, अभी सहज योगी बने। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर के बनते चले आए। हठ योगियों को तो आप कट करती हो। आप भी सहज योगी नहीं बने तो फिर मुश्किल कहाँ? तो एक ही बात है, और मुश्किल कहाँ? हठ योगी बने सहज योगी नहीं बने तो मुश्किल कहने से बात एक ही हो जाती। सहयोगी बनना है, यथार्थ याद है निरंतर सहयोगी बनो। सिर्फ अपने स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स बढ़ते रहो। अभी तो उतरती कला समाप्त हो गई, अभी भी है, अब तो चरती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, वा तो साकारी याद वा तो निराकारी याद हो। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से किसकी याद आवेगी? यज्ञ पिता की याद आवेगी ना। तब भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हो, यज्ञ कारोबार पर हो। एक होता है डायरेक्ट विक्रम विनाश की स्टेज में स्थित होना, फुल फोर्स में विकर्मों का विनाश करना, और दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो वो जो शक्तियां जमा होती हैं तो उनसे वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बुद्धि में ये भरने से वो पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल करके फिर भरना, और दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आते ही खत्म हो जाएगा, ये स्टेज आते ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। तो जो स्टेज चाहते हो वो नेचुरल बन जाएगी, जब चाहो तभी बन जाएगी। तो फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज न है तो दूसरा तरीका है, पहले जाओ भरने के लिए तो खाली तो स्वतः हो जाएगा। अभी चरती कला है ये स्मृति में रखो, सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहां भी नहीं जाएगी। यदि कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स होती है, फिर भी विद आनर्स में वो 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे, लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार व बाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य ये रखना चाहिए कि हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। ये कारोबार है तो ऑटोमेटिकली ये गिरचेता की स्मृति आवेगी, और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन के आप शरीर में ठहर सकते हो क्या? बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो कि मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावन हार, लेकिन वो तो दूसरे अर्थ में कह देते थे, लेकिन इस समय करने वाला निमित्त है, कराने वाला बाप है। अगर ये स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति आ जाएगी और फिर निरंतर योगी होती जाएगी। फिर कभी हंसी में नीचे नहीं आवेंगे, और हंसी में नीचे आए भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं। तो समझते हैं कि लोक कल्याणार्थ हंसी का पार्ट बजाया, फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव हो जाएगा। जैसे अभी अभी ये पार्ट बजाया, अभी दूसरा पार्ट बजाता हूं, तो ये सब खेल महसूस होगा। साक्षी हो जैसे पार्ट बजाए रहे तो सहज योगी हो गए ना। याद को भी सहज करो, जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स बढ़ सके। जब तक सहज याद नहीं है और कोई को कोर्स देते हैं, अपनी याद सहज नहीं है तो दूसरों को फोर्स नहीं बढ़ेगा। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, वारसदार कब बनेंगे? जो कोर्स देने वाले खुद भी सहज योगी की स्टेज में स्थित हो, निरंतर योगी हो। तो कोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे, तो सभी सहज योगी हैं। हट नहीं करो, 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते ये एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में रहे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इनको कहते भी सहज राजयोगी हो, कठिन योगी तो नहीं कहते हो। ये सहज योग वहां सहज राज्य करावेगा, और यहाँ का कठिन योग वहां का राज्य भी कठिन हो जाएगा। वहां की कोई मुश्किलात नहीं होगी अगर यहाँ सहज राजयोगी बनेंगे, यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार रहेंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे? देवताओं की चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, ये विशेष गुण दिखाते हैं ना, फीचर्स में सरलता जिसको आप भोलापन कहते हैं। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वो मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल और कर्म में भी सरल होगा, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। अच्छा तो